एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जब अमेरिका एक तरह से अपने ही बनाए जाल में फंस गया था।
मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारों को खरीद रही थीं, शहर गंदगी और बीमारी से भर रहे थे।
बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र बस खत्म होने की कगार पर है। एक ऐसा समय जब लगा कि सिस्टम पूरी तरह टूट चुका है।
तो सवाल यह है कि उस खाई से अमेरिका वापस कैसे निकला? इसका जवाब एक शब्द में है, प्रोग्रेसिविज्म।
हाँ, और आज हम इसी पर बात करेंगे वॉल्टर न्यूजेंट की किताब प्रोग्रेसिविज्म, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के जरिए।
लेकिन ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है ना?
बिल्कुल नहीं। आज हम जो ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की ताकत या सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं,
और मीडिया के रोल पर जो बहस करते हैं, हाँ, उन सब की जड़ें इसी दौर में हैं। तो ये समझना कि 100 साल पहले क्या हुआ था, आज की दुनिया को समझने का एक नक्शा जैसा है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं।
और इस कहानी को समझने के लिए मुझे लगता है पहले इसके लेखक वॉल्टर न्यूजेंट को जानना जरूरी है। वो नोट्रडेम विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे।
हाँ, पर वो उन इतिहासकारों में से नहीं थे जो सिर्फ राजा महाराजाओं या राष्ट्रपतियों की कहानी सुनाते हैं। उनकी खासियत कुछ और ही थी।
वो आंकड़ों के जादूगर थे, कह सकते हैं।
सही कहा। वो ये देखते थे कि कितने लोग गांव से शहर आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसी है। मतलब वो डेमोग्राफी यानी आबादी के विज्ञान के जरिए इतिहास को देखते थे।
और इसीलिए वो ये बता पाते हैं कि ये जो प्रोग्रेसिव आंदोलन था वो किसी एक नेता के दिमाग की उपज नहीं था,
नहीं, बल्कि वो उन लाखों लोगों की जिंदगी में हो रहे बदलावों का नतीजा था।
और यही वजह है कि उनकी किताब इतनी दिलचस्प है। वो इतिहास को ऊपर से नहीं बल्कि जमीन से देखते हैं। वो हमें सिर्फ तथ्य नहीं देते बल्कि उन तथ्यों के पीछे की असली वजहें समझाते हैं।
तो किताब का सबसे बड़ा आइडिया क्या है? न्यूजेन कहते हैं कि प्रोग्रेसिविज्म को एक आंदोलन समझना ही गलती है।
अच्छा,
हाँ, ये कोई एक राजनीतिक पार्टी या एक सोचा समझा प्लान नहीं था। ये तो एक तरह का तूफान था जो हर दिशा से आई छोटी बड़ी सुधार की हवाओं से मिलकर बना था।
मतलब एक खिचड़ी जैसा।
बिल्कुल सही शब्द है, एक खिचड़ी थी। इसमें समाज सुधारक भी थे जो बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाने के खिलाफ थे,
इसमें शराबबंदी की मांग करने वाले लोग भी थे।
और तो और इसमें नस्लवादी सोच रखने वाले भी थे।
है ना अजीब बात। इन सबको लगता था कि वो अमेरिका को सुधार रहे हैं, बस सबके सुधार का मतलब अलग अलग था।
और ये सब हो क्यों रहा था? क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां पुराने नियम कानून मतलब काम ही नहीं कर रहे थे। न्यूजेन कहते हैं कि ये आधुनिकता से निपटने का अमेरिका का पहला बड़ा और उलझा हुआ प्रयास था।
और मकसद था विज्ञान और सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके बेलगाम पूंजीवाद को काबू में करना।
चलिए उस दुनिया में चलते हैं जिसने इस आंदोलन को जन्म दिया। 19वीं सदी के आखिर में, जैसा हमने कहा, अमेरिका में तीन चीजें बहुत तेजी से हो रही थीं: औद्योगिकरण, शहरीकरण और अप्रवासन।
औद्योगीकरण का मतलब था बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियां, और ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टैंडर्ड ऑयल जैसी कंपनियां थीं जिन्हें ट्रस्ट कहा जाता था।
ये ट्रस्ट उस जमाने की बिग टेक कंपनियां थीं, कह सकते हैं।
हाँ, सोचिए जरा, अगर आज अमेज़न, गूगल और फेसबुक मिलकर एक हो जाएं और अपनी सरकार बना लें।
लगभग वैसी ही हालत थी। ये इतने ताकतवर थे कि इनके सामने सरकारें भी बौनी लगती थीं।
और इन्हीं फैक्ट्रियों की वजह से लाखों लोग गांव से शहरों की तरफ भागे, शहर रातों रात फैल गए, पर किसी योजना के बिना,
जिसका नतीजा था गंदगी, बीमारी और भीड़ से ठसाठस गरीब बस्तियां, जहां जिंदगी नरक जैसी थी।
और इसी माहौल में यूरोप के अलग अलग हिस्सों से लाखों नए अप्रवासी भी आ रहे थे जिनकी भाषा, धर्म सब कुछ अलग था। इससे समाज में एक नया तनाव भी था।
तो एक तरफ ये भयानक समस्याएं थीं और दूसरी तरफ कुछ नए विचार पनप रहे थे जो लोगों को उम्मीद दे रहे थे।
हाँ, और इन्हीं विचारों ने सुधार की आग में घी का काम किया।
इसमें एक बहुत दिलचस्प मोड़ चर्च के अंदर आया। कुछ पादरी कहने लगे कि सिर्फ प्रार्थना करने और अपने आत्मा बचाने से काम नहीं चलेगा।
मतलब
अगर आप असली ईसाई हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप बाहर निकलें और इन झुग्गियों को साफ करें, बच्चों को फैक्ट्रियों से निकालें। उन्होंने समाज सेवा को ही ईश्वर सेवा बना दिया। इसे ही सोशल गॉस्पेल कहा गया।
अच्छा, तो इसने सुधार के काम को एक मजबूत नैतिक आधार दिया।
बिल्कुल। फिर एक और विचार किसानों के एक पुराने आंदोलन से आया, जिसे पॉपुलिज्म कहते हैं।
हाँ, वो आंदोलन तो ज्यादा सफल नहीं हुआ था, पर उनके कई आइडिया बड़े काम के थे।
जैसे?
जैसे सरकार को रेलवे के किराए पे लगाम लगानी चाहिए या सेनेटरों को सीधे जनता को चुनना चाहिए। ये विचार बाद में प्रोग्रेसिव लोगों ने उठा लिए।
और इन सबसे ऊपर एक विश्वास था विज्ञान और एक्सपर्ट्स पर। लोगों में एक नया भरोसा जागा था कि समाज की समस्याएं भी बीमारी की तरह हैं।
और अगर हम उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करें तो एक्सपर्ट्स की मदद से उनका इलाज ढूंढा जा सकता है। ये बहुत बड़ा आशावाद था।
और इन विचारों को जमीन पर उतारने वाले लोग भी बड़े मजेदार थे। कोई एक तरह के लोग नहीं थे, इनमें पत्रकार थे, सामाजिक कार्यकर्ता थीं और नेता भी थे।
और इस लड़ाई में उनका सबसे बड़ा हथियार थी पत्रकारिता, जिन्हें मकरेकर्स कहा गया।
सोचिए, आज के जमाने के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, लेकिन बिना किसी सोशल मीडिया या 24 घंटे न्यूज के।
सही बात है, उनकी एक एक रिपोर्ट, एक एक कहानी समाज में भूचाल ला देती थी।
इसका सबसे मशहूर उदाहरण है अपटन सिंक्लेयर की किताब द जंगल।
ओ हाँ, ये तो कमाल की कहानी है। उन्होंने शिकागो के मीट पैकिंग उद्योग की ऐसी घिनौनी सच्चाई दुनिया के सामने रखी।
सड़ा हुआ मांस, मजदूरों की बुरी हालत, उसे पढ़कर लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया था।
हाँ, कहते हैं कि राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट नाश्ता करते हुए ये किताब पढ़ रहे थे और उन्होंने गुस्से में अपना सॉसेज फेंक दिया था।
इस एक किताब ने पूरे देश को हिला दिया और फूड सेफ्टी कानूनों की नींव रखी।
फिर थीं सामाजिक कार्यकर्ता, और इनमें ज्यादातर वो महिलाएं थीं जो पढ़ी लिखी थीं पर जिन्हें राजनीति में सीधे हिस्सा लेने का हक नहीं था।
जैसे जेन एडम्स।
हाँ, जेन एडम्स। उन्होंने शिकागो की झुग्गी बस्तियों में सेटलमेंट हाउस खोले। ये एक तरह के कम्युनिटी सेंटर थे जहाँ अप्रवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और हर तरह की मदद मिलती थी।
ये महिलाएं सिर्फ मदद नहीं कर रही थीं, बल्कि वो सरकार पर बाल मजदूरी रोकने और काम करने की जगहों को बेहतर बनाने के लिए कानून बनाने का दबाव भी डाल रही थीं।
और फिर आते हैं नेता। कुछ राज्यों के स्तर पर काम कर रहे थे, जैसे विस्कॉन्सिन के गवर्नर रॉबर्ट ला फॉलेट,
जिन्होंने अपने राज्य को सुधारों की एक लैब बना दिया था।
हाँ, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर थियोडोर रूजवेल्ट और वुड्रो विल्सन जैसे राष्ट्रपति आए, जिन्होंने इन विचारों को देश के कानून में बदल दिया।
रूजवेल्ट ने बड़ी कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ा।
ट्रस्ट बस्टर कहते थे उन्हें।
हाँ, और विल्सन ने फेडरल रिजर्व जैसा बैंक बनाया ताकि देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रहे।
तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला? कुछ बहुत बड़े और अच्छे बदलाव हुए। राजनीति में सीनेटरों का चुनाव अब सीधे जनता करने लगी,
जो पहले नहीं था। और सबसे बड़ी जीतों में से एक थी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलना।
बिल्कुल। और आर्थिक स्तर पर बड़ी कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए एंटी ट्रस्ट कानून बने।
लेकिन इस पूरी सुनहरी तस्वीर का एक बहुत ही स्याह पहलू भी था, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता,
और यहीं पर यह कहानी बहुत जटिल हो जाती है।
ये पहलू हैरान करने वाला है। मतलब ये वही लोग थे जो आम आदमी के अधिकारों और महिलाओं के वोट के लिए लड़ रहे थे,
लेकिन साथ ही साथ उनमें से कई ये भी मानते थे कि कुछ कमजोर नस्लों या अयोग्य लोगों को बच्चे ही पैदा नहीं करने चाहिए।
ये दोनों बातें एक ही दिमाग में कैसे चल रही थीं? ये इस आंदोलन का सबसे बड़ा विरोधाभास है।
पहला तो है अभिजात्यवाद। कई सुधारकों को आम जनता पर भरोसा ही नहीं था। उन्हें लगता था कि देश को पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स की एक टीम को चलाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को क्या पता कि उसके लिए क्या अच्छा है।
लोकतंत्र की बात करते करते वो एक तरह की तानाशाही की तरफ बढ़ रहे थे।
हाँ, और इससे भी भयानक था नस्लवाद। इस पूरे दौर में अश्वेत अमेरिकों के साथ जो भेदभाव और हिंसा हो रही थी, उसे ज्यादातर प्रोग्रेसिव सुधारकों ने या तो अनदेखा कर दिया
या फिर उसका समर्थन किया।
राष्ट्रपति विल्सन, जिन्हें एक महान प्रोग्रेसिव माना जाता है, उन्होंने सरकारी नौकरियों में नस्ली अलगाव को और मजबूत कर दिया।
और सबसे डरावनी बात थी यूजेनिक्स का चलन। उफ, वो भी क्षुभ विज्ञान था जो मानता था कि समाज को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ अच्छे जीन्स वाले लोगों को ही बच्चे पैदा करने चाहिए।
प्रोग्रेसिव लोगों में इस विचार का जोर शोर से समर्थन किया। ये दिखाता है कि विज्ञान पर अंधा भरोसा और नैतिकता की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है।
तो जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो कुछ बड़े सबक सामने आते हैं। पहली बात तो यही कि सुधार कभी भी साफ सुथरा नहीं होता।
प्रोग्रेसिविज्म एक ऐसी छतरी थी जिसके नीचे हर तरह के लोग थे, अच्छे, बुरे, समझदार और सनकी भी।
दूसरा बड़ा सबक सरकार की भूमिका को लेकर है। इस आंदोलन ने अमेरिका में ये सोच हमेशा के लिए बदल दी कि सरकार का काम क्या है।
इससे पहले माना जाता था कि सरकार को बस किनारे खड़े होकर तमाशा देखना चाहिए,
लेकिन प्रोग्रेसिव लोगों ने कहा, नहीं, सरकार एक औजार है, हम इसका इस्तेमाल समाज की बड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। ये सोच अपने आप में एक क्रांति थी।
और यहीं से तीसरा सबक निकलता है, जो आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो है लोकतंत्र और विशेषज्ञता के बीच की खींचतान।
ये बहुत ही अजीब बात है इस आंदोलन की। एक तरफ तो ये लोग कह रहे थे कि जनता को शक्ति दो, सीनेटर का चुनाव सीधे जनता करे,
और दूसरी ही सांस में कह रहे थे कि असल में देश तो पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स को ही चलाना चाहिए, आम आदमी को क्या पता।
ये विरोधाभास आज तक राजनीति में कायम है, जनता की सुने या एक्सपर्ट की।
और चौथा सबक है एक अच्छी कहानी की ताकत। मक्रेकर्स ने दिखाया कि अगर आप सच्चाई को दमदार तरीके से लोगों के सामने रखें तो आप बड़े से बड़े सिस्टम को हिला सकते हैं।
एक अकेली किताब द जंगल ने जो कर दिखाया वो शायद 100 भाषण नहीं कर पाते।
इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक विचार ये है कि प्रोग्रेसिव आंदोलन पूंजीवाद और लोकतंत्र को उनकी अपनी ज्यादतियों से बचाने का एक प्रयास था।
मतलब ये लोग सिस्टम के दुश्मन नहीं थे, बल्कि वे उसे सुधारना चाहते थे ताकि वो अपने ही बोझ तले दबकर खत्म ना हो जाए।
हाँ, एक तरह से सिस्टम के डॉक्टर थे।
एक और विचार उनके जबरदस्त आशावाद को दिखाता है। प्रोग्रेसिव लोगों का मानना था कि इंसान का दिमाग अगर सही ढंग से इस्तेमाल हो तो समाज की किसी भी समस्या को हल कर सकता है।
उनमें विज्ञान और तर्क को लेकर एक अटूट विश्वास था, जो आज के दौर में थोड़ा कम देखने को मिलता है।
पर एक चेतावनी भी है जो शायद सबसे जरूरी है। विशेषज्ञों पर प्रोग्रेसिव लोगों के भरोसे ने आम जनता की भागीदारी और कुशल सरकार के बीच एक ऐसा तनाव पैदा कर दिया जो आज भी मौजूद है।
मतलब एक्सपर्ट्स की सरकार ज्यादा असरदार हो सकती है, पर क्या वो लोकतांत्रिक होगी? ये सवाल उस दौर में पैदा हुआ था और आज भी इसका जवाब खोजना बाकी है।
तो सवाल ये है कि 100 साल पुरानी इस कहानी का आज हमारे लिए क्या मतलब है?
पहला तो यही कि आज की बड़ी बहसों को समझने की चाबी हमें यहीं मिलती है। क्या सरकार को बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर लगाम लगानी चाहिए?
ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा 100 साल पहले स्टैंडर्ड ऑयल के बारे में पूछा गया था।
दूसरा, ये हमें आज के मीडिया और एक्टिविज्म की ताकत दिखाता है। द जंगल की कहानी याद दिलाती है कि एक असरदार डॉक्यूमेंट्री,
एक खोजी रिपोर्ट या एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट आज भी वही काम कर सकता है जो उस किताब ने किया था।
ये बदलाव लाने वालों के लिए एक बड़ा सबक है।
और आखिर में ये हमें आम नागरिक की ताकत की याद दिलाता है। जेन एडम्स का काम दिखाता है कि बड़े बदलाव हमेशा संसद या राष्ट्रपति भवन से शुरू नहीं होते।
वो अक्सर हमारे आस पड़ोस में कुछ जुनूनी लोगों द्वारा शुरू होते हैं जो अपने आस पास की किसी समस्या को देखकर चुप नहीं बैठ पाते।
आज की चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि सामाजिक सुधार कभी भी सीधे और सरल नहीं होते। प्रोग्रेसिव आंदोलन ने अमेरिका को आधुनिक बनाया, लेकिन इसकी अपनी खामियां भी थीं।
खासकर नस्लीय समानता जैसे मुद्दों पर।
हाँ, यह हमें सिखाता है कि किसी भी सुधार आंदोलन को हमेशा एक आलोचनात्मक नज़र से देखना चाहिए, चाहे उसके इरादे कितने भी नेक क्यों न लगे।
और मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कैसे उस दौर के लोगों ने बड़ी बड़ी समस्याओं जैसे कि बेलगाम पूंजीवाद और भ्रष्टाचार को हल करने के लिए सरकार को एक हथियार के रूप में देखा।
उनका ये विश्वास कि एक्सपर्ट्स और संगठित प्रयास से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है आज भी हिम्मत देता है।
पर साथ ही ये हमें इस खतरे से भी आगाह करता है कि कहीं सुधार के नाम पर हम आम लोगों की आवाज को ही ना दबा दें।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।